अध्याय पांच। परमेश्वर के पास आपके लिए काम है। परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पर कभी समाप्त नहीं हो सकता, जब तक कि हमारी कलीसियाओं के सदस्य पुरुष व स्त्रियां एकत्र होकर अपनी कोशिशों को अध्यक्षों तथा कलीसिया के अफसरों के साथ मिलाकर कार्य न करें। ये वचन के तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, मरकुस 16:15 मसीह के प्रत्येक शिष्य के लिए हैं। जितने मसीह के जीवन के लिए मुकर्रर हुए हैं, वे सब अपने भाई के त्राण के लिए मुकर्रर हैं। खोए हुओं को बचाने के लिए जो इच्छा उसने प्रकट की, वही उनमें भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। सब एक ही स्थान की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, परंतु सबके लिए उसके पास एक स्थान और एक काम है। जिनको परमेश्वर की आशीषम मिली है, उनको यथार्थ सेवा द्वारा प्रत्युत्तर देना चाहिए। प्रत्येक वरदान का उसके राज्य के फैलाने में उपयोग होना चाहिए। आत्माओं के त्राण के लिए उपदेश देने का काम उस कार्य का एक छोटा सा भाग है। परमेश्वर का आत्मा पापियों को सत्य के प्रति दोषी ठहराता है और वह उन्हें मंडली के हाथ में सौंप देता है। मंडली के अध्यक्ष अपना कर्तव्य अवश्य करेंगे, परंतु वे उस कार्य को कदापि नहीं कर सकते जिस मंडली को करना चाहिए। परमेश्वर इस बात की मांग करता है कि उसकी मंडली उनको, जो विश्वास व अनुभव में कच्चे हैं, सेवा टहल करें। उनके पास जाएं गप्पे मारने को नहीं, किंतु प्रार्थना करने। उनसे ऐसे शब्द कहें जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहरे सेब हों। इस समय भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बुलाया है, जिस प्रकार उसने प्राचीन इसराइल को बुलाया था कि पृथ्वी पर ज्योति के स्वरूप हो। पहले, दूसरे तथा तीसरे दूत के संदेशों के सत्य की कुल्हाड़ी द्वारा उसने उनको अन्य कलीसियाओं तथा संसार से अपनी पवित्र संगति में जाने को पृथक किया है। उसने उनको अपनी व्यवस्था का धरोहारिया बनाया है और इस समय के लिए भविष्यवाणी के महान सत्यों को उनके सिपुर्द किया है। प्राचीन इसराइल को सौंपी गई पवित्र व्यवस्थाओं की भांति ये भी पवित्र धरोहर है जो जगत को पहुंचाती हैं। प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के 3 दूत इन लोगों का प्रतिरूप हैं, जो परमेश्वर के संदेशों की ज्योति को ग्रहण करते हैं और गुमाश्तों की तरह पृथ्वी के कोने कोने में चेतावनी का पैगाम देने जाते हैं। मसीह अपने शिष्यों को घोषित करता है, तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती 5:14। प्रत्येक मनुष्य से जो मसीह को ग्रहण करता है, कलवरी की क्रूस यह कहती है, देखो आत्मा की क्या कीमत है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, मरकुस 16:15। कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे इसमें बाधा पहुंचे। सब कालों के लिए यह सर्वप्रधान कार्य है, जिसका प्रभाव अंतकाल तक पहुंचता है। आत्माओं के त्राण के लिए मसीह ने अपने बलिदान द्वारा जो प्यार दिखलाया, वह उसके अनुयायियों में भी प्रकट होना चाहिए। मसीह प्रत्येक प्राणी को जो अपने आप को उसके लिए समर्पण कर देता है, खुशी से ग्रहण करता है। वह मनुष्य को परमेश्वर के मेल मिलाप में लाता है, ताकि वह संसार को अवतरित प्रेम के रहस्य तक पहुंचा सके। उस प्रेम की चर्चा करो, उसके विषय में प्रार्थना करो, उसके गीत गाओ और दूरवर्ती मुमालिक की ओर बढ़ते चले जाओ और दो सुदूर देशों में आगे बढ़ते जाओ और संसार को सच्चाई के संदेश से भरपूर कर दो। मसीह के सच्चे शिष्य उसकी साक्षी देंगे। यदि आप में से प्रत्येक एक जीवित मिशनरी होता, तो इस समय के संदेश को सब देशों के लोगों, भाषाओं तथा राष्ट्रों में शीघ्रता से प्रचार हो जाता।
जो परमेश्वर के नगर में प्रवेश चाहते हैं, उनको सांसारिक जीवन के कार्य व्यवहार में मसीह को प्रकट करना चाहिए। इसी के कारण वे मसीह के दूत और उसके गवाह कहलाते हैं। उनको बुरी प्रथाओं के विरुद्ध स्पष्ट निश्चित गवाही देनी है और दुष्ट कार्य करने वालों को परमेश्वर के मेमने की ओर संकेत करना है, जो जगत के पापों को उठा लेता है। जो उसको ग्रहण करते हैं, उनको वो परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार देता है। नया जन्म ही केवल एक मार्ग है जो हमको परमेश्वर के नगर को पहुंचाता है। वह मार्ग सकरा है और वह फाटक जिससे हम प्रवेश करते हैं वह तंग है, परंतु उसी पर हमें पुरुष, स्त्री व बालकों का पथ प्रदर्शन करना है और उनको शिक्षा देनी है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उनका नया हृदय और नई आत्मा होनी चाहिए। पुराने पैतृक चालचलन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आत्मा की प्राकृतिक अभिलाषाएं बदलनी चाहिए। धोखेबाजी, झूठ बोलना या गढ़ना तथा निंदा करना त्याग देना चाहिए। नया जीवन जिससे स्त्री पुरुष मसीह सरीखे बनते हैं व्यतीत करना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप उस बंधन को तोड़ना चाहते हैं जो आपको जकड़े हुए हैं? मृत्यु जैसी सुस्ती में क्या आप जागना चाहते हैं? चाहे आप पसंद करें या न करें, काम करने जाइए। व्यक्तिगत रूप में आत्माओं को यीशु के पास तथा सच्चाई के ज्ञान की ओर लाइए। ऐसे परिश्रम करने में आपको उत्तेजना तथा बल प्राप्त होगा। वह उकसाएगा और शक्ति भी देगा। अभ्यास से आपकी आत्मिक शक्तियां अधिक बलवंत होंगी, ऐसा कि आप सफलता से अपनी मुक्ति की युक्ति कर सकते हैं। बहुतों पर जो मसीह का इकरार करते हैं, मृत्यु की मूंछुच्छा छाई हुई है। उनको जगाने के लिए जो कोशिश हो सकती है उसे करो। चेतावनी दो, विनय करो तथा तर्क वितर्क करो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर का पिघलाने वाला प्यार उनकी शीतल प्रकृतियों को गर्म और मुलायम करे। यदि वे सुनने से इनकार करें तो भी आपका परिश्रम अकारथ न जाएगा। दूसरों को आशीर्वाद देने के प्रयत्न में स्वयं आपकी आत्माएं आनंद प्राप्त करेंगी। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो शिक्षित नहीं है, इसलिए परमेश्वर के काम में भाग नहीं ले सकते। परमेश्वर के प्रबंध में आपके लिए एक काम है। उसने प्रत्येक को एक काम दिया है। आप स्वयं अपने लिए पवित्र शास्त्र में तलाश कर सकते हैं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 119 आयत 130। आप काम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो प्रार्थना सच्चे हृदय से विश्वास के साथ मांगी जाएगी, वह स्वर्ग में ग्रहण की जाएगी। फिर आपको अपनी योग्यतानुसार कार्य करना है। स्वर्गीय प्राणी मानव साधन के संग सहयोग देने की बाट देख रहे हैं कि वे संसार को दिखलाएं कि मनुष्य क्या बन सकता है और उनके प्रभाव द्वारा नाश होने वाली आत्माओं को मोक्ष दिलाने में क्या क्या कर सकते हैं। मसीह हमसे तलब करता है कि उन हजारों के लिए जो अपने आप में नाश हुए जा रहे हैं और रेगिस्तानी किनारे पर जहाज के टूटे हुए भागों की तरह सब देशों में तितर बितर हैं, धीरज तथा दृढ़ता के साथ परिश्रम करें। जो मसीह की महिमा में भागी होना चाहते हैं, उनको उसकी सेवा कार्य में भी भागी होना चाहिए, अर्थात निर्बल भाग्यहीनों तथा निराश हुए लोगों की सहायता करने में। अपनी कलीसिया के लिए प्रत्येक विश्वासी को संपूर्ण हृदय से प्यार दिखलाना चाहिए। उसकी समृद्धशाली उसका प्रथम हित होना चाहिए और जब तक वह पवित्र कर्तव्याधीन अपने संबंध को मंडली के लाभार्थ ना बनावे, तो कलीसिया स्वयं उसके बिना अच्छा कार्य कर सकती है। यह बात सभी के अधिकार के अंदर है कि परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ करें। कितने ही ऐसे हैं जो बड़े बड़े रकमें फजूल भोग विलास में उड़ा डालते हैं। वे अपनी क्षुधा की तृप्ति करते हैं, परंतु कलीसिया के संभालने के हेतु अपना रुपया पैसा लगाना भारी कर समझते हैं। वे उससे सारे विशेषाधिकारों का लाभ तो उठाना चाहते हैं, परंतु चाहते हैं कि दूसरे लोग उसके बिल अदा करें। मसीह की कलीसिया की तुलना सेना से की जा सकती है। प्रत्येक सिपाही की जिंदगी परिश्रम, कठिनाइयों और खतरों की होती है। चारों ओर सतर्क शत्रु की सेना है, जिनका अंधकार की शक्तियों का राजकुमार नेतृत्व कर रहा है, जो कभी सोता नहीं और अपनी चौकी छोड़ता नहीं है। जब कभी मसीही पुरुष सावधान नहीं है, उसी समय यह शक्तिशाली शत्रु एकाएक जोरदार आक्रमण करता है। जब तक कलीसिया के सदस्य फुर्तीले तथा सतर्क ना हों, वे उसके हथकंडों के चक्कर में पड़ जाएंगे। क्या होगा यदि सेना के आधे सिपाही, जब आज्ञा है कि प्रत्येक अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, लापरवाही करें अथवा सो जाएं? परिणाम हार, दासत्व तथा मृत्यु होगी। यदि कोई शत्रु के साथ भाग जाए तो क्या वे पारितोषिक के योग्य समझे जाएंगे? नहीं, उनको तुरंत मृत्यु का दंड सुना दिया जाएगा। और यदि मसीह की कलीसिया बेपरवाह अथवा विश्वास योग्य नहीं हो, तो इसमें भी महत्वपूर्ण परिणाम निहित है। मसीही सैनिकों की एक सोती हुई सेना, इससे अधिक भयंकर और क्या हो सकता है? संसार के विरुद्ध वे क्या धावा मार सकते हैं जो अंधियारे के राजकुमार के अधिकार में हैं? वे जो युद्ध के दिन लापरवाही से पीछे खड़े रहते हैं, मानो उनको कोई दिलचस्पी नहीं और स्पर्धा के संबंध में उन्होंने कोई दायित्व महसूस नहीं किया। बेहतर है कि वे अपना रवैया बदल दें या तुरंत इस पद को छोड़ दें। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक स्थान। जहां कहीं स्त्रियां पुरुषों की तरह सच्चाई को फैलाने में लवलीन हो सकती हैं, उसका प्रकाश किया जा सकता है। वे ऐसी कठिन घड़ी में भी कार्य में शामिल हो सकती हैं और परमेश्वर उनके द्वारा भी काम करेगा, यदि वे अपने कर्तव्य का पालन करने को उत्साही होवें और परमेश्वर के आत्मा के प्रभावाधीन काम करें, तो उनको इस समय की जरूरत के अनुसार शक्ति प्राप्त होगी। मुक्तिदाता इन आत्म बलिदान करने वाली स्त्रियों पर अपने मुखरे को ज्योतिर्मय कर देगा, जिससे उनको ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो मनुष्यों की शक्ति से प्रबल होगी। वे परिवारों में वह काम कर सकती हैं जिसे पुरुष नहीं कर सकते। वह काम ऐसा होगा जो जीवन के भीतरी भाग तक पहुंचता है। वे लोगों के हृदय के इतना निकट पहुंच सकती हैं जहां पुरुषों को पहुंच नहीं हो सकती। उनके काम को बड़ी आवश्यकता है। दूरदर्शीतम स्त्रियां लोगों को उनके घरों में सच्चाई को समझाने में अच्छा कार्य कर सकती हैं। इस प्रकार जो परमेश्वर का वचन समझाया जाएगा, वह खमीर की भांति काम करेगा और उसके प्रभाव से समस्त परिवार विश्वास ले आएंगे। हमारा काम मसीह के लिए घरों में परिवारों के साथ शुरू होना चाहिए। युवकों का शिक्षण उससे भिन्न होना चाहिए जो भूतकाल में दिया था। उनका कल्याण अधिक परिश्रम की मांग करता है। कोई दूसरा मिशनरी क्षेत्र इतना महत्व नहीं रखता। सिद्धांत और नमूने द्वारा माता पिता को अपने बालकों को सिखलाना चाहिए कि वे उनके लिए काम करें जिनका हृदय अभी तक नहीं बदला है। उनकी तालीम ऐसी होनी चाहिए कि वे वृद्धों तथा दुखियों के संग सहानुभूति दिखावें और गरीबों तथा पीड़ितों के दुख दूर करने की चेष्टा करें। उनको मिशनरी काम में परिश्रमी होना सिखलाना चाहिए और बचपन ही से आत्मत्याग व आत्मबलिदान की शिक्षा दूसरों की भलाई के लिए तथा मसीह के कार्य की उन्नति के लिए मन में डालनी चाहिए, ताकि वे परमेश्वर के संग मिलकर काम करने वाले बने। नए मोहल्लों में जाकर साक्षी देना। परमेश्वर का अभिप्राय ये नहीं था कि उसके लोग एक ही जगह एक बड़ा समाज बनाकर बसे। यीशु के शिष्य पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि हैं और परमेश्वर का मनोरथ है कि वे देहात में, नगरों ग्रामों में, संसार के अंधकार में ज्योति की भांति छिटके रहें। उनको परमेश्वर के लिए विश्वास और कर्म द्वारा मिशनरी बनना है और आने वाले सृष्टिकर्ता के शीघ्र आगमन की साक्षी देनी है। हमारी कलीसिया के अवैतनिक सदस्य ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसे उन्होंने अभी तक मुश्किल से शुरू किया है। किसी को नए इलाके में केवल सांसारिक लाभ से नहीं जाना चाहिए, परंतु जहां कहीं जीवन निर्वाह के लिए संभावना हो, वहां उन परिवारों को जो सत्य में निपुण हैं, एक या दो परिवार करके एक ही स्थान में मिशनरियों की हैसियत से प्रवेश करना उचित है। उनकी आत्माओं के लिए प्यार, परिश्रम करने का दायित्व महसूस करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए कि उनको किस प्रकार सत्य में लाया जाए। वे हमारे पर्चे, मैगजीन, किताबें इत्यादि बांट सकते, उनके घरों में मीटिंग कर सकते, उनके पड़ोसियों से परिचय प्राप्त कर सकते और उनको इन मीटिंग में आमंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार वे अपना प्रकाश अच्छे कर्मों द्वारा चमका सकते हैं। कर्मचारियों को अपने बंधुओं के त्राण के लिए रोते हुए, प्रार्थना करते हुए तथा परिश्रम करते हुए परमेश्वर में स्थिर रहना चाहिए। याद रखिए कि आप अविनाशी मुकुट के लिए दौड़ दौड़ रहे हैं, जबकि बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा आदमियों के मुंह से बड़ाई सुनना अधिक पसंद करते हैं। आप नम्रता से परिश्रम करना पसंद करें। अपने पड़ोसियों को अनुग्रह के सिंहासन के सामने पेश करने में और परमेश्वर से उनके हृदय छूने के लिए विनती करने में विश्वास का अभ्यास करना सीखिए। इस तरीके से उपयोगी धार्मिक काम किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अध्यक्ष की अथवा कालपोर्टर की सुनने से इनकार करेंगे। जो नई जगहों में काम करते हैं, वे लोगों से मिलने के उत्तम तरीकों को सीख लेंगे और यूं दूसरे कर्मचारियों के लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों से मिलिए और उनके त्राण में दिलचस्पी प्रकट कीजिए। प्रत्येक आध्यात्मिक शक्ति को प्रयोग में लाने को जगाइए। जिनसे मुलाकात करते हैं, उनसे कहिए कि सारी चीजों का अंत निकट है। प्रभु यीशु मसीह उनके हृदयों के दरवाजों को खोलेगा और उनके मन पर पक्का प्रभाव डालेगा। अपने दैनिक कार्य में संलग्न होते हुए भी परमेश्वर के लोग दूसरों को मसीह के पास ला सकते हैं। जब वे यह काम कर रहे हैं तो उनका विश्वास और भी पक्का हो जाएगा कि त्राणकर्ता उनके पास ही है। उनको यह ख्याल करने की जरूरत नहीं कि हमें अपने ही कमजोर प्रयत्नों पर छोड़ दिया गया है। मसीह उन्हें बोलने के लिए ऐसे वचन देगा जिनसे अंधकार में भी लाचार संघर्ष करती हुई आत्माओं को शांति, प्रोत्साहन तथा बल प्राप्त होगा। जब वे त्राणकर्ता की वाचा को पूर्ण होते हुए देखेंगे तो स्वयं उनका विश्वास भी दृढ़ हो जाएगा। वे न केवल दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे, परंतु जो काम वे मसीह के लिए करेंगे वह उनके लिए भी आशीर्वाद लाएगा। बाइबल को सादे तौर से लोगों के सामने उपस्थित करने से एक जबरदस्त काम किया जा सकता है। परमेश्वर के वचन को प्रत्येक आदमी के दरवाजे तक फैलाइए, उसके साधारण लेखों को प्रत्येक के अंतकरण पर जमाइए और सबों से त्राणकर्ता की आज्ञाओं को दोहराइए। शास्त्र में ढूंढ ढांड करो, यूहन्ना 5:31। उनको नम्रता से समझाइए कि वे बाइबल को यथार्थतः ग्रहण करें। ईश्वरीय प्रकाश के लिए विनती कीजिए और जब तक प्रकाश चमके उसकी प्रत्येक अनमोल किरण को ग्रहण कीजिए और निर्भय होकर उसके परिणामों में स्थिर रहिए। हमारी कलीसिया के मेंबरों द्वारा घर घर जाकर बाइबल का अध्ययन तथा पर्चों के बांटने का काम होना चाहिए। मसीही चाल चलन सुडोलता से तथा पूर्ण रीति से तभी बन सकता है जबकि मानुषिक प्रतिनिधि निष्पक्षता से सत्य का प्रचार करना अपना सौभाग्य समझे और परमेश्वर के कार्य को अपनी आय से संभाले। हमें जलाशयों के पास बोना है और अपनी आत्माओं को परमेश्वर के प्यार में लिप्त रखना है और जब तक दिन है काम करते रहें और परमेश्वर के दिए हुए द्रव्य को उस काम में लाएं जो हमारे सामने आए। जो कुछ काम करने को मिले उसे ईमानदारी के साथ करें। जो बलिदान हमें करने पड़े उन्हें खुशी से करें। जब हम जल के पास बोते हैं तो हम महसूस करेंगे जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। दूसरा कुरिन्थियों 9:6। धर्म का व्यावहारिक प्रकाश।
स्वामी की सेवकाई के कार्य में जब हम तन मन से क्रियाशील नहीं होते हैं तब हम अपने विश्वास को धोखा देते हैं। केवल क्रिश्चियन धर्म ही जो तन मन से क्रियात्मक रूप धारण कर प्रकट होता है आज्ञा लंघन तथा पाप में पड़े हुए लोगों पर अपना प्रभाव डालेगा। प्रार्थना करने वाले नम्र व सुशील विश्वासी मसीही जो अपने कर्मों से प्रकट करते हैं कि उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा उस सत्य को बताने को है जिससे सारे लोगों की जांच की जाएगी के लिए बाहुल्य फसल इकट्ठा करेंगे। हमारी कलीसिया में कमजोर और निर्बल विश्वास के लिए कोई बहाना नहीं है। हे आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो, ज़करिया 9:12। हमारे दूतों की शक्ति मसीह में है, वो पिता के सामने हमारा वकील है। वही अपने राज्य के खंड खंड में अपने लोगों पर अपनी इच्छा प्रकट करने भेजता है। वही अपनी कलीसियों के बीच चलता फिरता है। वो अपने अनुयायियों को पवित्र, उच्चतर तथा कुलीन बनाना चाहता है। जो सचमुच उन पर विश्वास रखते हैं इनका प्रभाव संसार में जीवन की सुगंध होगी। वो अपने दाहिने हाथ में तारों को संभालता है और उसका अभिप्राय है कि इनके द्वारा अपनी ज्योति जगत को देवे। इस प्रकार उसकी इच्छा है कि अपने लोगों को स्वर्गीय मंडली की उच्चतर सेवा के लिए तैयार करे। निस्संदेह उसने हमें भारी काम करने को दिया है, आइए हम उसको दृढ़ संकल्प तथा सच्चाई से करें। हम अपने जीवन में दिखलाएं कि सत्य ने हमारे लिए क्या क्या किया है। विभिन्न धार्मिक प्रयत्नों को उच्चतर श्रेणी में लाने के लिए आत्मत्याग, आत्मबलिदान, अजय शक्ति तथा अधिकांश प्रार्थना का मूल्य भुगताना पड़ा था। जो लोग अब कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए खतरा है कि कहीं वे अयोग्य रहने में संतोष प्राप्त करें और कहें कि अब इतने बड़े बलिदान व परिश्रम, ऐसी कठिन और नापसंद मेहनत की आवश्यकता नहीं है जैसी इस संदेश के नेताओं ने भुगती थी। और अब तो समय बदल गया, अब परमेश्वर का काम चलाने के लिए साधन उपलब्ध है। ये जरूरी नहीं कि वे अपने को ऐसी कठिन परिस्थिति में डालें जैसे इस संदेश के प्रारंभ में अनेकों को करनी पड़ी थी। लेकिन यदि काम की वर्तमान अवस्था में वैसा ही परिश्रम तथा आत्मबलिदान की उत्सुकता रहती जैसी इसके आरंभ में थी तो हम इसका 100 गुना परिणाम देखते जो हम इस समय देख रहे हैं। हमारा व्यवसाय उत्तम श्रेणी का है। सब्बत मानने वाले एडवेंटिस्ट होने के नाते से हम इकरार करते हैं कि हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, अपने त्राणकर्ता के आगमन की बाट देख रहे हैं। परमेश्वर के थोड़े से विश्वास योग्य लोगों को सबसे गंभीर चेतावनी का संदेश सौंपा गया है। हमको अपने वचनों तथा कर्मों से प्रकट करना चाहिए कि हम उस जिम्मेदारी को जो हमारे ऊपर रखी गई है महसूस करते हैं। हमारा प्रकाश इतनी स्पष्टता से चमकना चाहिए कि दूसरे भी देख सकें कि हम अपने दैनिक जीवन से पिता की बड़ाई करते हैं, कि हमारा संपर्क स्वर्ग से है और मसीह की मीरास में भागी हैं, कि जब वो पराक्रम और महिमा में प्रकट होगा तब हम भी उसकी तरह होंगे।